नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th चैप्टर, आठवां श्लोक और उसके आगे। सो पहले से एक श्लोक तक तो पढ़ लिया था हमने, 12वें अध्याय का। अब 8वें से 20वें श्लोक तक हम पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो, 12th chapter 8th verse। मय्येव मना आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशया निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझे सदैव वास करोगे। ओके, आई विल स्टार्ट। ओम अज्ञानार्थ मिलिंदस्य ज्ञानांजन शलाके शुरुन्दितमेनाथस्मै। सो भगवान यहां पर, अभी तक भगवान ने बताया कि निराकार की उपासना से ज्यादा बेटर क्या है, साकार। इनफैक्ट भगवान ने ये बताया कि निराकार है बेकार, अगर एक लाइन में बोलना चाहे तो। मुश्किल है, शुरुआत करने में भी मुश्किल है निराकार की उपासना, साधन में भी मुश्किल है और फल भी क्लेशपूर्ण है। मगर भगवान की भक्ति और साकार रूप की उपासना, वो सुसुखम कर्तुमव्यम, वो शुरू में भी सुखपूर्वक है, बाद में भी, और जब प्रेम मिल जाएगा तो सुखपूर्वक है ही। इसलिए भगवान अब अपनी भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब वो खत्म हो गया टॉपिक निराकार का, वो भगवान ज्यादा डील भी नहीं करना चाहते, दैट्स ओवर। अब भगवान अपनी भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। दोनों चीज है ना भक्ति में, भक्ति और भक्त। भगवान की तो चर्चा हो गई है पहले ही। सो कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि मई एवं मना आधत्स्व, जो भगवान का भक्त है या जो भक्ति है वो क्या है, भगवान में मन अपना स्थित करना। आधत्स्व मतलब होता है स्थिर करना, ये भक्ति है बस, दैट्स ऑल। अपने मन को भगवान में लगाना, चेतस्तत प्रवीणम सेवा, सबसे बड़ी सेवा एक्चुअली अपने मन को ही लगाना है भगवान में, क्योंकि मन ही तो नहीं लगता बस। सो अपनी क्रियाओं से, अपने वचनों से हम क्या कर रहे हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं कि जिससे हमारा मन भगवान में लग जाए। और उल्टा भी, अगर मन लग गया तो अपने आप क्रियाएं लग जाएंगी और अपने आप वाणी लग जाएगी, जहां मन है वहां अपने आप शरीर जाएगा। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आधत्स्व मतलब मन को स्थिर कर लो मुझ में। एक लाइन में अगर भक्ति है तो ये है, मई बुद्धिम निवेश है आप, अगर, और सिर्फ मन ही नहीं, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। क्योंकि अगर बुद्धि, मन तो शायद ना भी लगे, मन संकल्प विकल्प आत्मक होता है ना, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, मगर बुद्धि एक बार लग गई तो फिर हटती नहीं। बुद्धि और मन में फर्क ही है, नहीं? एक बार आप समझ लोगे तो फिर आपने समझ लिया, अनटिल एंड अनलेस डाउट्स ना आ जाए। मगर मन ज्यादा विचलित, बुद्धि विचलित नहीं होती, तभी तो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्धि एक बार स्थिर हो गई तो वो मन को भी स्थिर कर सकती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि चलो मन तो शायद नहीं हो, मगर बुद्धि मुझ में लगा लो। बुद्धि मतलब ज्ञान, नॉलेज लो, फिर नॉलेज लोगे तो उससे मन को पकड़ना आसान हो जाएगा। ये भक्ति में ज्ञान का रोल है। तो जो लोग कहते हैं कि भी भक्ति में ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये क्या है फिर? कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो मायावादी शंकराचार्य के अनुयायी, वो लोग कहते हैं हाँ भक्ति वालों के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, भक्ति ठीक है अभी बच्चों के लिए, जब आगे बढ़ जाओगे तो फिर ज्ञान की बातें आएंगी। मगर ऐसा नहीं है, मई बुद्धि में निवेश है, कृष्ण कह रहे हैं बुद्धि लगा, बुद्धि का मतलब ज्ञान है, दैट्स ऑल। मगर ये ज्ञान रूखा सूखा ज्ञान नहीं है, ये भक्ति का ज्ञान है, जिससे भगवान में मन लग सकता है। दोनों चीजें लगा दी, मन और बुद्धि। आफ्टर ऑल सूक्ष्म शरीर यही इसी से बना है, मन बुद्धि से और क्या बना है। ये लग गया तो इंद्रियां अपने आप लग जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निवशस्सी मई एवा, अगर इस तरह करोगे तो मई एवा मुझ में ही तुम निवास करोगे, अतः ऊर्ध्वम न संशया। इसका मतलब क्या है इसमें? अतः ऊर्ध्वम न संशया, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वैसे ऊर्ध्वम का मतलब पता है क्या होता है? ऊपर। तो भगवान कह रहे हैं कि इसके इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, मेरे इस आदेश के ऊपर कुछ भी नहीं है। दी एंड है, बस इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें संशय मत करो कि भक्ति के आगे भी कुछ है, वैसे संशय लोग करते हैं। भगवान ने मायावादियों को काटने के लिए बोल दिया है। मायावादी यही टिपिकल उनका ये, आप किसी भी मायावादी के पास जाओगे, मायावादी समझते हो ना अद्वैत, वो अगर आप उनके पास जाओगे तो आप कहोगे हाँ भक्ति करनी है, तो कहेंगे भक्ति करनी है, आपको लगेगा ये भी भक्ति कह रहे हैं, वो भी भक्ति कह रहे हैं। वो डिनाई नहीं करते, नहीं करेंगे डिनाई कभी भी। आप ऋषिकेश में हम लोग गए थे, उत्तरकाशी गए थे हम, वो कौन से है वो शिवानंद डिवाइन लाइफ, तो वहाँ पे भी उनकी ब्रांच है। वहाँ पे एक स्वामी जी थे, उन्होंने हम उनके यहाँ रहे थे, मतलब थोड़ा सा इन्वाइट किया था उन्होंने, तो उन्होंने हम तो उनको पता ही हम इस कौन से हम भक्ति में ही है, तो कहते हैं बहुत अच्छा भक्ति कीजिए, वेरी नाइस, मतलब भक्ति से ही तो सब कुछ होगा। तो मगर उनकी फिलॉसफी ये क्या है, उनकी फिलॉसफी है कि सुबह भक्ति और शाम को ज्ञान योग, उनका ऐसा है कि जिससे धीरे धीरे भक्ति से कहाँ पहुंच जाओगे, ज्ञान में पहुंच जाओगे, कृष्ण की भक्ति करते करते निराकार में लीन हो जाओगे। मगर पहले भगवान पे ध्यान करोगे, कृष्ण पे, जब मन फिक्स हो जाएगा तो भगवान को भी छोड़ दो और मन को भी छोड़ दो, और पूरा मन शून्य हो जाएगा और एक भ्रम में लीन हो जाएगा। वो भगवान को इस्तेमाल करते हैं अपने मन को एकाग्र करने के लिए, उनका आइडिया ये लीलाएं और रूप। मगर भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर, मुझ में मन लगाओ और बुद्धि लगाओ, इससे ऊपर और कोई आदेश है ही नहीं। ऐसा नहीं है मेरे में मन लगा के छोड़ दो, ये नहीं है, बस वो दी एंड है मेरे में मन लगाना। अतः ऊर्ध्वम अर्जुन इस पर संशय कभी भी मत करो। लगता आसान है, मतलब ठीक है आप कहोगे मन लगाना है बुद्धि लगानी है, ठीक है सिंपल सिंपल उपदेश है। क्या वेद नहीं पढ़ने, यज्ञ नहीं करने, तपस्या नहीं करनी? भगवान कह रहे हैं कोई इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये तुमने कर लिया तो वो करने की कोई भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों पढ़ना है, क्यों दिमाग खराब करना है अपना, क्यों न्याय वैशेषिका योग सांख्य क्यों पढ़ना है, बस ये सिंपल है। मगर प्रॉब्लम ये है कभी कभी सिंपल चीज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बस ये प्रॉब्लम है। सिंपल इज समटाइम्स कॉम्प्लेक्स, इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं होता क्योंकि वो सिंपल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि सिंपल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है कि प्रोसेस इज इजी बट एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। सो कलयुग में हम इतने गिर गए, हम इतने मंद बुद्धि हो गए कि हमारे से इतना इजी काम भी नहीं हो रहा। मन लगाना है बुद्धि लगानी है, मन लगाने के लिए भगवान ने अपना नाम दे दिया, मेरा नाम लो मन लग जाएगा, बुद्धि के लिए गीता दे दी, काफी है। मगर ये भी तो नहीं हो रहा हमसे, तो इसका मतलब नहीं है कि भगवान हमें रिजेक्ट कर देंगे। भगवान कहेंगे यार इतना आसान बताया, निकल लो अब तुम यहां से, अब नहीं, अब बस कुछ नहीं हो सकता। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान के पास ऑप्शन है। मतलब हम होते तो हम तो कहते यार दिमाग खराब कर दिया, इतना ईजी बना दिया फिर भी तुम नहीं कर पा रहे, गेट लॉस्ट। बट भगवान कृपा के सागर है, नहीं भगवान ऑप्शन देते हैं, तो भगवान नेक्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं। तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है चलो, तो एक और ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अथ चित्तम समाधातुम, अगर तुम्हारा चित्त समाधातुम, मतलब समाधि मतलब स्थिर नहीं हो रहा, न शक्नोषी मई स्थिरम, अगर मेरे में मन तुम्हारा चित्त अगर मेरे में स्थिर नहीं हो रहा, न शक्नोषी मतलब तुम समर्थ नहीं हो अपने मन को मुझ में स्थिर करने के लिए। ये हमारी कहानी है, नहीं हो रहे, हम चैंटिंग कर रहे हैं मन नहीं लग रहा, गीता सुन रहे हैं समझ नहीं आ रही, नहीं लग रहा ना चित्त। यहाँ पे वैसे भगवान ने चित्त इस्तेमाल किया, मन नहीं किया, बाय द वे चित्त में मन बुद्धि दोनों आते हैं। ऊपर मनोबुद्धि अलग है, अपेक्षित है। सो ठीक है, समझ नहीं आ रहा गीता चैंटिंग वन नहीं लग रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभ्यास योगे ना ततो माम, तब अभ्यास करो। अभ्यास क्या करो, भक्ति का अभ्यास करो, मतलब साधना करो वहां तक पहुंचने के लिए। तो आप जाके तात्पर्य पढ़ना, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर दो तरह के अभ्यास है भक्ति के, एक है वैधि भक्ति और एक है रागनों का भक्ति। प्रभुपाद वैसे पहली लाइन में लिख रहे हैं, श्लोक में भक्ति योग के दो पृथक पृथक विधियां बताइए, मगर श्रील प्रभुपाद उनका नाम नहीं ले रहे, मगर जाके पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। तो वैधि भक्ति और रागनों का भक्ति, दो अभ्यास करो, जैसे भी कर सकते हो, या तो विधि विधान फॉलो करके अभ्यास करो, रूल्स रेगुलेशंस जो हम बात कर रहे थे, भक्ति के नियम फॉलो करो। भक्ति के नियम फॉलो करने से मन अपने आप लग जाएगा। अब पॉइंट यह है कि सिर्फ अगर आप केवल हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहे हो और गीता पढ़ रहे हो तो शायद मन ना लगे, उसके साथ साथ हमें और भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं अभ्यास योगे ना, विधि विधान होते हैं। इसलिए कभी कभी हम चैंटिंग करते हैं सिर्फ और सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं मगर मन नहीं लगता। सो क्या कमी है इसका, मतलब अभ्यास की कमी है। अभ्यास की कमी है मतलब कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस उसको फॉलो करो। जैसे अभ्यास मतलब क्या, रिपीटेशन नहीं। सो हम करते हैं मन नहीं लगता, भगवान कह रहे अभ्यास करो। ओके फाइन, अगर तुम एक माला करते हो दो करो अभ्यास, रिपीट दो तीन करो, तीन करते हो चार करो, 16 माला कर रहे हो, गुड मिनिमम। कभी टाइम मिले तो ज्यादा कर लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यही तो भक्ति के नियम है, और क्या है, काउंट करना और भी थोड़े बहुत नियम है। सुबह जल्दी उठ के कर लो, जल्दी मन लग जाएगा। सो भक्ति के नियम करो, और उससे क्या करना है, उससे क्या होगा, माम इच्छाप्तुम धनंजय, उसको अभ्यास करने से मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हो जाएगी। भगवान इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। पहले तो बता रहे हैं अभ्यास करो, मगर अभ्यास ऑफ कोर्स डिवोटीज के साथ करना चाहिए। अपने आप से अभ्यास करोगे तो फिर दैट्स अनदर प्रॉब्लम। प्रभुपाद लिख रहे हैं निर्देशन में होना चाहिए, मगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी आप प्रैक्टिस अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं हम चैंटिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट होना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आनी चाहिए, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से ही भगवान में मन लगेगा। पॉइंट ये है, केवल नियम फॉलो करने से मन नहीं लग जाता, क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, केवल मैकेनिकली अगर आप नियम फॉलो करोगे, उसको कहते हैं नियम आग्रह। नियमों में सिर्फ नियम पालन करने से फल नहीं आता, नियम पालन करके उसका रिजल्ट क्या है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी। जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी तब मन लग जाएगा। तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं नियम फॉलो कर रहा हूं मन लग जाएगा, नहीं, हमें पता होना चाहिए टारगेट क्या है हमारा। पर ऐसा तो नहीं हो कि हम अंधेरे में तीर चलाते रहे, हम नियम तो फॉलो कर रहे हैं, संसार को प्राप्त करने की इच्छा है, ऐसा भी होता है, नहीं होता है भी, करते जा रहे हैं नियम फॉलो, संसार को प्राप्त करने की इच्छा है, फिर मन नहीं लगेगा आपका। फिर आप कहोगे यार मैं तो सारे नियम फॉलो कर रहा हूं मन नहीं लग रहा, और फिर एक दिन भक्ति छोड़ देंगे। छोड़ भी देते हैं भक्ति, पता है आप लोगों को, नहीं मतलब अभी आप लोग जो नए हो आप सोच रहे हो छोड़ते कैसे, हम तो कभी नहीं छोड़ेंगे, मगर ऐसा सोचोगे तो पक्का छूटेगी, देखना। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि माया सबको घुमा देती है, माया बच्ची नहीं है। और ये प्रोसेस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा लाना भी बहुत इतना आसान भी नहीं है, नहीं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा इतनी आसानी से नहीं आती। बल्कि रूपा गोस्वामी क्या लिख रहे हैं कि अगर क्या है, जन्म कोटि सुकृति अपि न लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद भी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं आती, रेयर है। हाँ वो बात है कि अगर भगवान के आदेशों के अनुसार एज इट इज चलेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो इसी जन्म में हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा अपार है। नहीं चैतन्य क्या है वो, चैतन्य कृपा विचार नहीं, हाँ कृपा, हाँ पावे धे चमत्कार, चैतन्य महाप्रभु कृपा पे विचार, ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे विचार करो, और उस पे विचार करोगे तो हृदय में चमत्कार हो जाएगा। सो ये प्रोसेस जो हमारे आचार्यों ने बना के दिया है गौड़िया वैष्णविज्म, अगर सही से फॉलो करोगे तो इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट पॉइंट ये है कि जब तक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं आएगी तब तक मन नहीं लगेगा, या जितनी मात्रा में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी उतनी मात्रा में मन लगेगा आपका, बस ये समझ लो। अगर मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आया है इस्कॉन में, ठीक है, अभी भी आया है, और उसने कहा चलो मैं भी 16 माला करूंगा, ठीक है, उसने शुरू कर दिया, वो कहेगा मैं 16 माला नहीं, मैं तो 30 राउंड्स करूंगा रोज, कर लो, तो क्या उसका मन लग जाएगा? वो बस पहले ही आया, पहले दिन ही आया है, तो कहेगा मैं सारे नियम फॉलो करूंगा आज से, 30 राउंड्स भी कर रहा है, चैंटिंग भी कर रहा है, रीडिंग भी कर रहा है, सुबह भी उठ रहा है, ऑफ कोर्स फुल टाइम डिवोटी मंदिर में रह रहा है और सारे नियम फॉलो कर रहा है, तो क्या मन लग जाएगा? नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स हम देखते हैं नहीं लगता, क्यों? क्योंकि उसको भगवान के प्राप्त करने की इच्छा अभी नहीं आई है। सो नियम फॉलो करते करते जब हृदय शुद्ध होता है तब इच्छा आती है और फिर भगवान में हमारा मन लग जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसलिए नियम इस तरह डिजाइंड है कि हम भोग करना कम कर दें। आप जितना भोग करोगे ना उतना भी संसार को प्राप्त करने की इच्छा भी आती रहेगी, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाएगी, और फिर हम फॉलो करते रहेंगे मगर उसका कोई रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। इसलिए शास्त्र में कहा है कि भोग करना थोड़ा बहुत, थोड़ा केयरफुल रहो चीज़ों से, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, आगे जल्दी नहीं बढ़ पाएंगे, स्पीड कम होगी। ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई कहे भी मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं नियम फॉलो नहीं कर सकता, चलो भाई मुझसे नहीं हो रहा, चलो मैं थोड़ा बहुत नाम ले लूंगा, एक दो माला कर लूंगा, गीता पढ़ लूंगा, ठीक है, अभी इससे आधा नहीं कर सकता, ऐसा होता है नहीं होता है? तो नए आते हैं उनके तो है अभी नहीं कर सकते, एक रात में थोड़ा ना हम कोई 16 राउंड कर लेंगे, सारे रूल्स फॉलो कर लेंगे, समझ लेंगे, नहीं हो सकता। सो भगवान उन लोगों के लिए जो अभ्यास में असमर्थ है उनके लिए बता रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वो और क्या कर सकते हैं। तो क्या भगवान कह रहे हैं? अभ्यास अपि असमर्थोऽसि, जो अभ्यास में भी असमर्थ है वो क्या करेगा? मत कर्मा परमो भवा, उसको मेरे लिए कर्म करना चाहिए, कर्म मतलब उसको मेरी सेवा करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद लिख रहे हैं मंदिर कंस्ट्रक्शन, सपोज मंदिर कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर दे डिवोटीज की, या प्रचार में मदद कर दे, या प्रचार में हेल्प कर दे, तो वो एंगेज हो जाएगा ना, वो भाई सारे रूल सब कुछ नहीं कर सकता इतना ज्यादा, तो ठीक है बाकी टाइम क्या करेगा? बाकी टाइम भगवान की सेवा करे, ये बाकी टाइम भगवान की सेवा करे और क्या करे, दैट्स ऑल फिनिश। सो यही कर रहे हैं ना हम लोग, जो नए डिवोटीज आते हैं, जो पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाते, चैंटिंग ज्यादा चैंटिंग नहीं करते, ज्यादा रीडिंग नहीं, ठीक है सब शुरू शुरू में होती नहीं, तो उनको एंगेज करने के लिए सेवाएं होती हैं बहुत सारी, ठीक है कुकिंग में हेल्प कर दो, प्रचार में मदद कर दो, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में मदद कर दो, मंदिर में कुछ सेवा कर दो, तो इस तरह से वो करते करते वो भी अभ्यास में समर्थ हो जाएंगे। सब हमारा तो सब क्या ऐसे ही हुआ नहीं, जब नए थे हमने भी कौन सा, मतलब सभी ऐसे होते शुरू में थोड़ा ना सारे नियम फॉलो होते हैं, तो फिर हम सर्विसेज करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे तो सेवाएं छोड़ दोगे, वो नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं अगर वो नहीं कर सकते तो ये कर लो। सेवा करते करते नियम फॉलो होने लगेंगे, जब नियम फॉलो होंगे तो सेवा और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। ये नहीं सोचना चाहिए अगर आप नियम फॉलो करने में असमर्थ हो तो भगवान सेवा कह रहे हैं, मतलब सेवा नीचे हो गई, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। कोई सोच ले यार मैं तो कुकिंग में लगा पड़ा हूँ और ये तो अपना चैंटिंग करते हैं, पढ़ रहे हैं, सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, या मैं तो देखो पिलिया यहाँ पर, ऐसा मतलब यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, क्योंकि सेवा का फल सेवा है, ये भी श्रील प्रभुपाद कह रहे अपने लेटर में, सेवा का फल सेवा होता है। आप जितनी सेवा करोगे उससे सेवा करने का और और उत्साह मिलेगा, और जब सेवा करोगे तो नियम फॉलो करने की शक्ति आएगी कृपा से। जब नियम फॉलो करने की शक्ति आएगी तो भगवान से क्या प्रे करोगे आप, क्या प्रे करते हम चैंटिंग करते वक्त, कि भगवान अपनी सेवा में मुझे, तो भगवान और सेवा करने का अवसर देंगे। बस फर्क ये होगा कि अभी इस दसवें श्लोक में जो उस जो वो भगवान की सेवा करेगा ना, वो सिंपल सर्विस होगी। अभी भाई अभी ठीक है, आप चैंटिंग कर लो, मतलब आप कुकिंग कर लो, प्रचार में हेल्प कर दो, या हमारा संडे प्रोग्राम हो रहा है उसमें आके कोई सेवा कर लो भाई, मतलब एज अ ऑडियंस भी आ सकते हो बट दैट्स अनदर थिंग, सेवा कर लो, कुछ ना कुछ सर्विस हो जानी चाहिए, अच्छा है उससे एंगेज हो जाओगे, दैट्स ओके। मगर जब आगे बढ़ जाओगे, जब शुद्ध हो जाओगे और नियम फॉलो करने लगोगे, अभ्यास हो जाएगा, तब भगवान सेवा देंगे, मगर वो सेवा बहुत, वो फिर सेवा कठिन सेवा होगी। नहीं अभी सिंपल है, जैसे अर्जुन को दी, अर्जुन को कौन सी सेवा दी है सबसे कठिन, मतलब हम वो कर ही नहीं सकते, हमारे हम तो भाग ही जाते वहां से। अगर हमारे पेरेंट्स होते सामने और भगवान कहते मारो, टाटा बाय बाय कृष्णा, बहुत हो गया, अगले जन्म में मिलेंगे, इट वॉज इम्पॉसिबल। तो अर्जुन को वो सेवा क्यों दी, हमें क्यों दी, क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, नहीं तो फिर उनको सेवा दे देते हैं, भाई अब तुम प्रीचिंग करो जाके, और इधर उधर अब नए में तो आप प्रीचिंग नहीं कर सकते ना, तो प्रीचिंग में हेल्प कर दो। सो इस तरह से सेवा का स्तर बदल जाता है। इसलिए इस श्लोक से नहीं समझना चाहिए कि सेवा नीचे है, ये नहीं समझना चाहिए। सेवा के ग्रेड्स अलग अलग हैं, सेवा के लेवल अलग अलग होते हैं। जैसे प्रभुपाद को भगवान ने बोला ठीक है अमेरिका जाओ, अरेंज कर दिया ना, दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट, हाउ टू डू दैट। सो लोगों के लिए अलग अलग है, ओके। अब अगर भगवान कह रहे हैं कि तुम ये भी करने में असक्षम हो, कोई कहेगा भी मुझसे तो ये भी नहीं होता, मैं तो सेवा भी नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो उसको, ऐसा भी हो सकता है, नहीं सिवा उसकी टांगें टूटी हो, कहेगा भी मुझसे तो नहीं हो रही, या हो सकता है बिल्कुल ही नया हो, कहे भी मुझसे तो, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं तो बस थोड़ा बहुत सुनूंगा, थोड़ा प्रचार में हेल्प कर दूंगा, थोड़ी बहुत डोनेशन दे सकता हूँ एक दो माला करके और बस पढ़ लूँगा, इतना काफ़ी है, मैं ज़्यादा ये रूल्स ही फॉलो नहीं कर सकता, इतना काफ़ी है। तो भगवान उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है तुम ये नहीं कर सकते तो नेक्स्ट ऑप्शन कर लो, क्या करना है, अथैतत अपि अशक्तो असि, अगर तुम ये भी करने में असक्षम हो, अगर तुम मेरे डिवोटीज की हेल्प भी नहीं कर सकते तो क्या करो, कर तुम मद योगम आश्रिता, और मेरे यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने सर्व कर्म समस्त फल कर्मों के फलों को त्याग कर कर्म का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। सर्व कर्म फल त्यागम तथा क्रूर यथात्मवान, तो सारे कर्मों के फलों को त्याग दो और क्या करो, यथात्मवान। यथात्मवान क्या होता है, आत्मस्थित हो जाओ। आत्मस्थित क्या मतलब, ये मतलब क्या है, सारे कर्मों के फलों त्याग दो और यथात्मवान मतलब यत्न करो मेरे भक्तों का संग लेने का, इतना कर लो, इतना तो कर सकते हो भाई। आप पपट पढ़ के देखना, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चलो भाई अगर आप भक्तों की मदद नहीं कर सकते प्रचार में, मंदिर कंस्ट्रक्शन में, क्लीनिंग में, सेवाओं में, तो फिर ऐसा करो अपना जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हो करते रहो, संसार में वो काम करेगा ना, फिर ज्यादा टाइम तो वहां देगा ना, अगर यहाँ पे नहीं देगा तो एटलीस्ट वहां पे कर्म के फलों की को त्याग दो, फलों के पीछे मत भागो, कि फल के पीछे भागोगे तो फिर तो गए काम से, फिर तो माइंड अब्सॉर्ब हो जाएगा, नहीं रजोगुण तमोगुण में चला जाएगा। अभी पैसे के पीछे भागते रहोगे संसार में रहकर तो पैसे में मन चला जाएगा, फिर मुझ में क्या लगेगा। एटलीस्ट जो काम कर रहे हो अपना, भाई सेवा नहीं कर रहे तो टाइम वहां लगेगा ना, टाइम तो कहीं तो टाइम बिताओगे, तो फिर घर में गए आप क्या करना है, अब अभ्यास है ना कोई सेवा है, सो अपना ऑर्डिनरी काम करोगे, तो कृष्णा कह रहे हैं ओके फाइन काम करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम तो छोड़ नहीं सकते तुम, मैं ये एडवाइस नहीं करता छोड़ने को, फल को त्याग दो, फल की इच्छा मत करो, उस काम को ड्यूटी की तरह करो उन लोगों के लिए, और मेरे भक्तों के साथ बस पड़े रहो, इतना कर लो, मेरे भक्तों के साथ यत्न करो रहने की। अब जो नया आदमी है ना बिल्कुल, वो उसको मन भी नहीं करेगा भक्तों यहाँ रहने का, पता है मुश्किल है ना उसके लिए, यार टाइम नहीं मिलता क्या, मतलब पहले ही थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, टाइम भी नहीं है कुछ नहीं है, इसलिए कृष्णा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यथात्मवान, यत्न करो, प्रोग्राम्स में चले जाओ, डिवोटीज के साथ रहो, उनसे क्वेश्चंस पूछो, धीरे धीरे एसोसिएट करो, तो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ जाओगे, और क्या है, सिंपल। भक्तों को छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, सो हर स्थिति में भक्त तो है ही, भक्तों को नहीं छोड़ सकते। सो भगवान ने ये लेटर बता दी 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक, फिनिश हो गया, ये भक्ति का प्रोसेस है। तो पहला टॉप मोस्ट क्या है कि मेरे में मन लगाओ और बुद्धि लगाओ, सेकंड क्या है, नहीं कर सकते तो भक्ति के नियम फॉलो कर लो जो हम कर रहे हैं, नियम भी फॉलो नहीं कर सकते तो भी सेवा कर लो कुछ भक्तों के पास जाके, सेवा भी नहीं कर सकते तो क्या करो, तो भक्तों के पास जाके बैठ जाओ, सुन लो उनसे, संडे प्रोग्राम में आ जाओ भाई, बैठ के सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो क्या कह रहा था मैं, हाँ तो दैट्स ऑल, तो सुनते रहो फिर भक्तों से, ठीक है सुनो, अगर ये भी नहीं हो तो भगवान कह रहे हैं ये तो दी एंड है, मतलब भक्तों से नहीं सुनोगे फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो फंस जाओगे। ओके हियर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कृष्णा उसके बाद कह रहे हैं कि श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागात त्यागात शांति निरंतरम। कृष्णा कह रहे हैं कि अभी तक तो मैंने तुम्हें भक्ति का रास्ता बताया है, अगर तुम भक्ति नहीं कर सकते तो क्या करना है, वे तुम कहो मुझसे तो भक्तों का संग भी नहीं हो रहा, मैं वो भी नहीं कर सकता, मैं बहुत अहंकारी हूं, मैं नहीं बैठ सकता नीचे जमीन पे, मैं नहीं बैठ रहा, क्या कर लोगे तो मैं भक्तों के पास नहीं जा रहा, मेरे अपने आइडिया है, तो उनको भी भगवान रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो एक डायरेक्ट प्रोसेस है भक्ति का, प्रभुपाद लिख रहे हैं डायरेक्ट जो अभी तक बताया, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, जो भक्ति नहीं कर सकते उनके लिए भी ऑप्शन दे रहे हैं भगवान, मतलब यू कैन इमेजिन भगवान सबके लिए सोचते हैं, किसी को रिजेक्ट नहीं कर, जैसे राजा प्रजा में सबके लिए सोचेगा ना, वे पड़ोसी नहीं सोचेगा, अपने पड़ोसी कहेगा तू भाड़ में जा, तूने तो पाप, तूने गड़बड़ कर दी, मगर राजा ऐसा नहीं है, राजा को सबके लिए सोचना है, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रजा ही है ना, वो भी उसने कुछ गड़बड़ कर दी फिर भी उसके कुछ बेनिफिट के लिए सोचेगा ही ना, भी इसका भला कैसे हो जाए। तो भगवान के परिप्रेक्ष्य से भगवान को सबके बारे में सोचना है, हमें नहीं सोचना इसके बारे में, पॉइंट मैं बता रहा हूं, भगवान कह रहे भक्ति नहीं कर सकते तो ये प्रोसेस है इनडायरेक्ट, तुम कहेंगे यार चलो ठीक है भक्ति नहीं कर सकते तो मैं ये कर लूंगा, नहीं ये हमारा काम नहीं है, ये राजा का काम है सोचना, भगवान का काम है सबको लाना, हमारा काम तो डायरेक्टली भक्ति करना है। यू गॉट माई पॉइंट, फर्क है, क्योंकि कोई वो नेक्स्ट ऑप्शन भी ले सकता है, भक्ति नहीं कर सकते डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट में आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं कर सकता, नो यू कांट डू, जो तुम्हारा काम है तुम करो, जो भगवान का काम है भगवान करेंगे, भगवान ने इनडायरेक्ट प्रोसेस उनके लिए बनाया जो भक्ति नहीं कर सकते, दैट्स ऑल, मगर तुम्हारे लिए ऑर्डर है कि तुम भक्ति करो बस। सो कृष्णा कह रहे नहीं कर सकते तो क्या करो, यदि तुम भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ज्ञान लो भाई, फिर ज्ञान कौन सा, वैदिक ज्ञान, फिर संस्कृत पढ़ो, स्कॉलर बनो, या शांति कुंज चले जाओ इधर उधर, फॉर एग्जांपल वहां पे वेद हैं, सब हैं, हम हरिद्वार तो जाते थे नहीं, वहां चले जाओ, सब चीजें गायत्री परिवार है, उसमें वेद पढ़ाते हैं, गायत्री वायत्री है सब है, फिर वहां से चलो तुम उपनिषद और ये सब पढ़ के धीरे धीरे ऊपर बढ़ो, ज्ञान लो, ओके गुड, कि हो सकता है ज्ञान लेने से समझ आता है कि भक्ति जीवन का लक्ष्य है, हो सकता है, ओके, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ज्ञान करते करते कहां पहुंचोगे तुम, ध्यान पे पहुंच, ऑफ कोर्स जब नॉलेज लोगे तो मन ध्यान लगाओगे ना, फिर ध्यान बढ़ेगा तुम्हारा, कि पर भ्रम क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, नहीं इन चीजों पर ध्यान होता है, ध्यान बढ़ जाएगा, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है। तो भगवान यहां पे बता रहे हैं, देखो ध्यानात कर्म फल त्यागात, ध्यान तक पहुंच जाओगे, मगर एक बात ध्यान रखना, चाहे तुम ज्ञान कर रहे हो, चाहे ध्यान कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कर्म के फलों को जरूर त्याग देना, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले भी भगवान की वही एडवाइस थी, जिसने कर्म के फलों को नहीं त्यागा वो फंस जाएगा 100%। सो ज्ञान, ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान ज्ञानों का फल क्या है? मुक्ति। और ध्यान, ध्यान का फल क्या है? सिद्धियां, वो भी आती है नहीं। तो भगवान कह रहे हैं तुम ज्ञानियों करो, ध्यानियों करो, मगर एक बात ध्यान रखना कि कर, कि इनके फल का, फल को त्याग देना, मुक्ति की इच्छा मत करना ज्ञानियों करते, वरना मुक्ति में फंस जाओगे। ध्यानियों करते सिद्धियों की इच्छा मत करना, वरना सिद्धियों में फंस जाओगे, तो फिर तुम ज्ञानियों से, ध्यानियों से मेरी भक्ति तक नहीं पहुंच पाओगे। भगवान ये बता रहे हैं भी तुम भक्ति नहीं कर सकते तो ये कर लो, मेरी भक्ति तक पहुंच जाओगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि इन प्रोसेसेस को करने में बहुत प्रॉब्लम है, व्यक्ति फंस जाते हैं, मुक्ति में फंस जाते हैं। आप देख लो कितने भी लोग हैं जो गुरु हैं, टीवी में आते हैं, परमहंस ये वो ये वो, सिद्धियों में फंस जाते हैं। नहीं, सिद्धियां पावर आ जाती हैं, फिर उसी में फंस के बस लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अब लूटते हैं बस। या मुक्ति की चर्चा होती है, आत्मा परमात्मा एक ही है, प्रभुपद पोपट में ला रहे हैं आत्मा परमात्मा एक है, या तो तुम इसमें फंस जाओगे आत्मा परमात्मा एक है। सो मुक्ति के पीछे मत भागो, मुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकल अशांत। सो ये भगवान की एडवाइस है, कर्म के फलों को त्याग दो, ध्यानियों का ज्ञान योग प्रोसेस के फलों को त्याग दो। भक्ति योग का फल क्या है? प्रेम। नहीं, उसको त्यागना है? उसको नहीं त्यागना। भगवान कह रहे कर्म के फलों को त्याग दो। ज्ञान योग और ध्यान योग कर्म के अंतर्गत आते हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं। भक्ति योग कर्म के अंतर्गत नहीं आता। नहीं, वो तो भगवान की कृपा से होता है, वो कर्म नहीं है वो। इसलिए कृष्ण यहाँ पे कर्म फल इस्तेमाल कर रहे हैं। फलों को त्याग दो, फलों के त्यागने से अनंत शांति प्राप्त होती है, दैट्स ओके। सो भगवान ने यहाँ पे भक्ति बता दी अपनी। अब कृष्णा आखिरी के श्लोकों में अपने भक्त के बारे में बता रहे हैं, जो डायरेक्ट भक्ति करेगा उसमें क्या क्या गुण आएंगे वो समझा रहे हैं। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ तो पता लगना चाहिए। इफेक्ट आ रहा है नहीं है, मैं प्रेम तक पहुंच भी रहा हूँ नहीं पहुंच रहा हूँ, या ऐसी मजमाला घुमाया जा रहा हूँ और पढ़ता जा रहा हूँ, हो क्या रहा है? तो उसके लिए भगवान अपने भक्तों के लक्षण बता रहे हैं कि ये सारे लक्षण मेरे भक्तों में आ जाएंगे अगर मेरी भक्ति अच्छी तरह करेगा वो, जैसे मैंने बताया है शुद्ध भक्ति, तो वो लक्षण अपने आप आ जाएंगे। और क्या बता रहे हैं 13-14 श्लोक में, एक्चुअली जाके पढ़ना पर्पट्स, बहुत अच्छे पर्पट्स हैं इसके, मगर वैसे यहाँ एक मिनट यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको इसका जो 13-14 श्लोक का जो जो जो, जो तात्पर्य है उसकी पहली लाइन अब देखो क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद। फर्स्ट लाइन, शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे दिव्य गुण का वर्णन कर रहे हैं, जितने भी गुण है 13-14 श्लोक में, इससे आगे भी, ये ऑर्डिनरी क्वालिटीज नहीं है। ये आपको लगेगा कि यार मतलब मैत्रा करुणा ये बचा, मैत्री रखता है, करुणा रखता है दूसरों पे, ये तो साधारण लोग भी करते नहीं, मगर नहीं, भगवान कह रहे हैं ये गुण दिव्य गुण है। इसलिए दो तरीके के गुण होते हैं, एक दिव्य गुण होते हैं और एक भौतिक गुण, ये जो हम बात कर रहे थे, प्राकृत और अपराकृत, ये आ गया यहाँ पर। हाँ वो सारे दैवी गुण थे 16वें अध्याय में, वहां पे भगवान दैवी, वो भी ठीक है। यहाँ पे भगवान स्पेसिफिक अपने भक्तों में गुण बता रहे हैं, ये पूरे प्राकृत गुण है। अब फर्क क्या है भक्ति के गुण और साधारण गुण में, क्या फर्क है? बाहर से एक ही लगेंगे, डिवोटी भी बहुत करुणामयी होगा, ऑर्डिनरी आदमी भी बहुत, नहीं अच्छे लोग तो होते ही है नहीं, मैत्री भी करते हैं लोग, हम भी मैत्री कर रहे हैं, मगर फर्क बहुत होगा उन दोनों में। भक्तों में जो गुण है वो किसके लिए होंगे? वो भगवान और वैष्णव के आनंद के लिए होंगे। ऑर्डिनरी लोगों में जो गुण होंगे वो भगवान वैष्णव के आनंद के लिए नहीं है, वो तो बस, वो किस लिए है? वो समाज के लिए और अपने आनंद के लिए है नहीं। भक्तों के जो गुण है इसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें स्वार्थ है नहीं, वो अच्छा बनना चाहते हैं ना, तभी तो गुण ला रहे हैं कि लोग मुझे अच्छा सोचें। मान लीजिए अब ये जो अच्छे लोग हैं, मान लीजिए समाज के, आप सोच के देखो अगर ये समाज के अच्छे लोग हैं, इनको आप कहीं ऐसी जगह डाल दो यहां पे सभी कमीने हैं, सभी धूर्त हैं, सभी तो लूटने में लगे हैं, तो अच्छे बने रहेंगे? कहेंगे भाई ये लूट के खा गए, अब मैं इनको बताता हूं, मैं अच्छाई अच्छाई छोड़ो, सब छूट जाएगी अच्छाई। अच्छाई इनकी स्थिर नहीं होती क्योंकि भगवान के लिए नहीं है। सो और अगर सभी गंदे हैं, कहेगा भाई मैं भी गंदा हो जाता हूं, अब मुझे कोई अपनी प्रेस्टेज थोड़ी ना बचानी है। बल्कि गंदों के समाज में अगर आप अच्छे हो गए तो बेवकूफ समझेंगे आपको, बल्कि गंदों के समाज में आपको बहुत बहुत टॉप मोस्ट गंदा बनना पड़ेगा, तब आपको लोग अच्छा समझेंगे, हाँ यार ये अच्छा है इसको फॉलो। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? सो इसलिए उन लोगों की अच्छाई बिल्कुल अलग है। अब प्रभुपाद इसमें बताएंगे, अब मैं बताता हूं क्या फर्क है भक्तों के गुण में। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त क्या है, अद्वेष्टा। अद्वेष्टा मतलब ईर्ष्या नहीं करता, तो मतलब ईर्ष्या नहीं करता मतलब यह है कि ईर्ष्या मतलब क्या होता है कि दूसरों के दुख से सुख होना। डिवोटी दूसरों के दुख से सुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको संसार से वो लेना देना ही नहीं है। उसके पास 1,00,000 रुपए, 1,000,000 डॉलर्स हो, कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, हमें जब यहाँ पे रहना ही नहीं। द्वेष तब होगा ना जब हमें यार उसके पास इतना है, मेरे पास, जब तब आपको लगेगा जब यहाँ पे रहना है, हमें रहना ही नहीं, हमें तो जाना है भाई। ट्रेन में इतने सारे लोग बैठे होते हैं, कोई अगर आपके पास करोड़पति बैठा हो, ठीक है यार अब ये अपने आप चला जाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, है नहीं? उससे द्वेष नहीं होता, अपने घर वालों से द्वेष होता है जो आपके साथ रह रहा है ना, क्योंकि उसको आप देख रहे हो बार बार। जो चला जाएगा यार, ठीक है, आउट ऑफ साइट, क्या कहते हैं, आउट ऑफ माइंड, ठीक है, वो उसको प्रॉब्लम नहीं है। वो जो घर में रिश्तेदार है उनसे होती है, वो रोज ही मिलते रहेंगे, वो कहेगा मैंने मर्सिडीज खरीद लिया, आके मारुति है, अगली बार कहेगा रोज रोज खरीद लिया, आके मारुति पड़ी है, यार दिमाग खराब हो गया, मेरे पास क्यों नहीं है, दैट्स द आइडिया, वो तो चला गया। सो एक डिवोटी को द्वेष नहीं होता, एक नॉर्मल आदमी को तो होगा, वो अवॉइड नहीं कर सकता। एक डिवोटी को क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका रिश्तेदार कहेगा मेरे मैंने मर्सिडीज खरीद ली 1,300 मारुति है, तो आप मन में क्या सोचोगे? डिवोटी का सोचेगा, ठीक है भाई तू रोल्स रॉयस भी खरीद ले, उसमें बैठ के संसार में घूमता रहे, मैं तो जा रहा हूँ टाटा, मैं तो भगवान के पास जा रहा हूँ। अल्टीमेटली संसार में घूमेगा ना तू, क्या होगा? सो द्वेष नहीं करता हो, उससे होगा ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं। अगर आप फिक्स्ड गोलोक जाना है तो क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है बैठ के? अद्वेष्टा, आप देख रहे हो ये गुण कैसे आया, द्वेष नहीं होना कैसे आया, भगवान से जुड़ गया है, अपने आप कोशिश करके नहीं आया। जो संसारी लोग कहते हैं आज से हम द्वेष नहीं करेंगे, देखो मगर रोक नहीं पाते, वो तो डिवोटी भगवान से जुड़ा हुआ है, फोकस्ड है, भगवान के पास जाना है, इसलिए खत्म हो गया द्वेष। ठीक है यार तुम चाहे $100, तुम चाहे मिलियंस बिलियंस डॉलर्स लो, हमें यह करना है, हमें तो जाना है वापस। मैत्र, मैत्री करता है, मैत्री मतलब हाँ, मैत्री मतलब फ्रेंड है, वो हरे का सबसे फ्रेंड क्यों है, वो अपने दुश्मनों को भी फ्रेंड रहता है, वेल रहता ही है, आप देख लेना प्रभुपाद देख रहे हैं यहाँ पर, वो अपने दुश्मनों को भी मैत्री होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि दुष्ट क्यों मेरे से दुश्मनी कर रहा है, मेरे बुरे कर्म है, इसलिए बस दैट्स ऑल। एक डिवोटी कन्विंस्ड है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है भगवान की प्लानिंग है, एक्चुअली उसको पता है। तो अगर भाई मेरे कोई पिछले कर्म आए तो कृष्ण ही चाहते होंगे कि मुझे इसका फल मिले, इसलिए ये मुझसे दुश्मनी कर रहा है, ठीक है भाई कर ले, क्या है, मैंने समझाया था ना, वो दुश्मन थोड़े ना, वो तो भगवान की प्लानिंग होती है, नहीं? सो इसलिए उसको, वो हर एक से मैत्री रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करुणा, करुणा मतलब हर एक पे करुणा रखेगा भाई, अगर उसको कोई मारेगा भी उस पर भी करुणा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो भगवान का भक्त है ना, भगवान के सारे गुण भक्तों में आ जाते हैं, और भक्तों का साधु का एक ही लक्षण है, करुणा करना। जो साधु करुणा नहीं करता वो साधु नहीं हो सकता, सिंपल। इसलिए चैतन्य प्रभु ने क्या कहा है, तरोरेव सहिष्णु नाम, नहीं पेड़ की तरह होता है ना डिवोटी, एक्चुअली ये एक्चुअली वेदों में ही आता है, वैष्णवा वनस्पत्या, वैष्णव कैसे होते हैं, वनस्पति की तरह, ये ऋग्वेद में आता है। जो महाप्रभु ने सिंपल बोल दिया तरोरेव सहिष्णु नाम, वनस्पतियों की तरह है, क्योंकि हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहते हैं, माफ कर देते हैं उनको, वनस्पतियों काट के हम खा जाते हैं, कुछ कहते हैं किसने रिवोल्ट किया आज तक, पूरा खेत रिवोल्ट कर दिया, ऐसा कभी हुआ है? सुबह सुबह सारे अनाज खड़े हैं, रिवोल्ट रिवोल्ट अभी भी उगते जा रहे हैं कि हम खा ले काट के उनको. मतलब यू कैन इमेजिन, वनस्पति पता क्यों बोला है, क्योंकि वनस्पति ऐसे जीव हैं जो उगते हैं मरने के लिए. यू कैन इमेजिन, खुद उनको पता है मरेंगे, हमें खाएंगे लोग, फिर भी वो उग रहे हैं वहीं पर बैठे बैठे. ये होते हैं वनस्पति, ऐसे वे होते हैं वैष्णव, वो दूसरों की मदद करते रहते हैं. उनको पता है मैं मदद करूंगा, ये मेरे को बोलेगा 10 बातें, उनको पता है संसार तो ऐसे ही है ना, आप मदद करोगे वो 10 बातें बोलेंगे, चाहे आप अच्छा भी कर रहे हो फिर भी आपके उसमें गलतियां निकाल देंगे. उनको पता है कि ऐसे ही होगा, बट फिर भी वो दूसरों की मदद करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं. इसलिए कह रहे हैं करुणा, भोगी नहीं कर सकता ऐसा, एक बार करेगा दो बार करेगा, अगर तीसरी बार किसी ने गाली दे दी ना उन्होंने, भाड़ में जाए यार, मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ तेरे लिए, एक तो इतना कर रहा हूँ ऊपर से तू और बोल रहा है, ऐसे ही होता है नहीं होता है. मगर भगवान के भक्त स्थिर है करुणा, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए हैं, वो करुणा करते रहते हैं. और वो भी वो इसलिए भी करते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ तो परफेक्ट ही हो गई, वो तो भगवान से जुड़े ही है ना. तो करुणा मतलब प्रचार, बेसिकली प्रचार करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं. निर्ममो निरहंकारा, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, निर्ममो मतलब होता है कि वो अपना कुछ भी नहीं. एक्चुअली यहाँ पर वैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो अपना कुछ, वो अपने चीजों को अपना नहीं मानता, किसका मानता है, भगवान की वस्तुएं मानता है, अपने शरीर को भी भगवान की प्रॉपर्टी मानता है वो. इसलिए वो ध्यान भी रखता है इन चीजों की, ऐसा नहीं है कि वैसे पता है, वैसे लोग, वैसे जो ज्ञानी लोग हैं ना, वो कहते हैं देखो हमारा कुछ भी नहीं, वो भी कहते हैं सब भगवान का है, वो भी कहेंगे, आप जाके सुनो. डिवोटी भी कहेंगे हमारा कुछ नहीं सब भगवान का, मगर फर्क क्या है दोनों में, दोनों में क्या फर्क है, उनके कहने में हमारे कहने में क्या फर्क है, व्हाट डू यू से? क्या हो गया? ठीक है चलो, हाँ वो तो है ही, मगर इस बात में कैसे फिट होगा ये? वेल फर्क ये है, हाँ एक तो डिवोटी कहेगा सब भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगाएगा, ज्ञानी कह रहा है सब भगवान के हमारा कुछ नहीं है, उसको त्याग देगा, सेवा वेवा तो कुछ है ही नहीं वहां पे, तो निराकार भ्रम है, कहाँ लगाएगा वो. और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञानी बोलेगा सब कुछ मेरा नहीं है सब भगवान का है, और छोड़ देगा उन चीजों को. डिवोटी बोलेगा कुछ मेरा नहीं है भगवान का है, और उससे आसक्त हो जाएगा. यू कैन इमेजिन, ये डिवोटी है, आसक्ति नहीं हटती, वो आसक्ति हटानी भी नहीं, आप हटा नहीं पाओगे, बस वो भगवान का समझ के हम उससे आ सकते हैं. अभी भी हम आ सकते हैं अपना समझ, जैसे मान लीजिए आपका सेलफोन ही है ये, अभी भोगी तो आ सकता है ना इससे, उसको तो अपने समझेगा मेरा है. ज्ञानी क्या कहेगा? ज्ञानी कहेगा ठीक है मैं निरा सकता हूँ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको चोरी हो जाएगा सेलफोन, कहेगा ठीक है यार हो गया. डिवोटी का फोन है, अगर वो क्या करेगा, कहेगा भगवान का है वो तो आ सकता है, चोरी हुआ तो क्या करेगा, वो ढूंढेगा इसको, भाई मेरा सेलफोन का है, उसको पकड़ के मारेगा चोर को, तूने लिया कैसे मेरा सेलफोन. अब बाहर से आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, मगर पता है हम उसको क्यों मार रहे हैं, क्योंकि किसका फोन है, कोई किसी ने भगवान की चीज चोरी की तो गुस्सा नहीं आएगा, अगर गुस्सा नहीं आया तो आपको प्रेम क्या है भाई. अब आप प्रेम, आप ज्ञानी हो, आप प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, मगर पॉइंट समझना चाहिए. सो यू विल बिकम एंग्री, हमारा नहीं है. मान लीजिए सीता देवी को चोरी करके ले गए रावण, तो क्या राम भगवान कहते हैं ठीक है त्याग दिया मैंने, हमारा मेरा कुछ नहीं है, इधर बढ़िया. राम भगवान कहेंगे हनुमान जी से जाके ले गया सीता को, राम भगवान मैं त्यागी हूँ, मैंने सबको त्याग दिया. नॉनसेंस है, नहीं उनको गुस्सा ही आ रहा है, क्योंकि भगवान की प्रॉपर्टी चोरी कर ली ना सीता को. सो रावण को भी गुस्सा आ रहा था, सीता मुझसे लेके जा रहे हैं, मगर दोनों गुस्सा अलग है, उनको भी वो दोनों ही लड़ रहे हैं सीता के लिए वो भी मुझे है तो मुझे है तो, बट बहुत फर्क है, वो राम के लिए लड़ रहे हैं और वो अपने लड़ रहे हैं, और उस फाइट में ज्ञानी नहीं थे कितने सारे ऋषियों को मिले थे राम भगवान जब गए वनवास में, वो तो अपना मेडिटेशन कर रहे थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था, मैंने कहा ठीक है हमने त्याग दिया। सो इसलिए निर्ममों से नहीं समझना चाहिए कि उसको चीजों से आसक्ति नहीं, उसको है, मगर ये समझ के कि वो भगवान की चीज है भाई, नेचुरली आई मीन टू से मंदिर है, अगर ये मंदिर खराब होगा तो आप अच्छा नहीं साफ नहीं करोगे, साफ नहीं करते मंदिर को, क्यों करते हो, ये भगवान की है ना, केयर तो करनी पड़ेगी, तो उससे हम आसक्ति होती है, मगर आसक्ति अपने लिए नहीं होती, बस ये समझना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, क्योंकि आप आसक्त हो, आप सोचोगे मैं तो भगवान के लिए आसक्त हूं, मगर हो सकता है पूरी तरह अपने लिए आसक्त हो, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है भाई, ठीक है हम तो भगवान की चीज है, हम तो आ सकते हैं, ऐसे कैसे छूट जाएगा, मगर हो सकता है आप पूरे अपने लिए आ सकते, तो उन्होंने फर्क कैसे पता लगाए कि मैं भगवान के लिए आ सकती हूँ अपने लिए आ सकती हूँ, वो कैसे पता लगेगा, व्हाट डू यू से, हाउ डू यू मेक दैट डिफरेंस।
हर समय वो भगवान की सेवा में लगा रहता
हूँ। वेल आंसर भगवान आगे ही कर रहे हैं, निर अहंकार, अगर अपने लिए आ सकते होगे तो अहंकारी हो गए, आप बोलोगे मेरा सेलफोन है, मेरा लैपटॉप है, मेरी गाड़ी है, वो अहंकार रहेगा आपको उस चीज का, अगर भगवान की चीज है तो यू डोंट बोस्ट अबाउट, बोस्ट अराउंड नहीं, बोस्टिंग नहीं होगी, ठीक है दैट्स ओके, भगवान की है। और दूसरी चीज है समा दुखा सुख क्षमी, समा दुख सुख में समान रहोगे, अगर कोई चोरी भी कर ले आपको गुस्सा तो आएगा, मगर अगर भोगी का सेलफोन चोरी होगा ना तो उसको गुस्सा आएगा, गुस्से में भगवान को और भूल जाएगा, मगर डिवोटी का सेलफोन चोरी होगा उसको गुस्सा आएगा, मगर उस गुस्से में भगवान का और स्मरण हो जाएगा, उस दुख में उसका मन विचलित, इसलिए कह रहे समा दुख, समान रहेगा उसका मन दुख में, अगर अपने लिए अटैच थे वो खोएगा तो आप भगवान को भूल जाओगे, आप देख लेना, अगर आप अटैच्ड हो उससे खो गया, अपने लिए आ सकते हो तो चैंटिंग करोगे भूल ही जाओगे, भगवान आएंगे ही नहीं, टाटा बाय बाय, वही चीज घूमेगी, वो चीज ही घूम रही है, इसका मतलब आप चीज से आ सकते हैं, भगवान से आ सकते हो तो भगवान नहीं घूमेंगे, तो यू कैन चेक, तो दुख में विचलित भगवान का विस्मरण कभी नहीं होगा डिवोटी, ये बेस लाइन है, भगवान का विस्मरण हो गया तो सब कुछ अपने लिए चल रहा है, इसका मतलब सो ये दो चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, और सुख में भगवान को नहीं भूलेगा, तो सेलफोन मिल गया तो सेलफोन मिल गया, भगवान को भूल गए, इसका मतलब आप अपने लिए आ सकते, दैट्स ऑल, सो दैट यू हैव टू टेक केयर, बल्कि जब डिवोटी को दुख होता है तो भगवान का स्मरण और बढ़ जाता है, और जब सुख होता है तो क्या होता है, तब भी बढ़ जाता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं समान, समा सुख दुखी, समानता का मतलब पता है क्या है, कि उसको दुख सुख में भी भगवान का समान रूप से स्मरण रहेगा, समान का मतलब अब समझे, हाँ तो मतलब पॉइंट ये है कि अगर आप ज्ञानियों की गीता लोगे ना, ज्ञानियों की वो समा दुखा सुखी को बिल्कुल अलग ट्रांसलेट करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी समा दुखा सुखी मतलब दुख सुख में भी कोई मर जाए तो ठीक है आपको कुछ नहीं होना चाहिए, कोई आपको अच्छी न्यूज मिल जाए तो सुखी नहीं होना चाहिए, उनकी एडवाइस ये है, मगर बिल्कुल अजीब सी अंडरस्टैंडिंग है, वो ठीक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान तो है ही नहीं पिक्चर में, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मर जाए आपको न्यूज आए तो दुख नहीं होगा क्या, आपको होगा या नहीं, ऑफ कोर्स हो गई, मतलब वैसे कैसे करते हो, दुख नहीं है, या कुछ अच्छी न्यूज आए तो अच्छा भी लगेगा, ऐसा बात नहीं है, तो वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल एडवाइस है, कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई सुख नहीं होना चाहिए, आपका हाथ कट गया ठीक है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप किसी भी ज्ञानी का हाथ काट दोगे वो वो पागल हो जाएगा चिल्ला चिल्ला के, फिर उससे पूछो बेटे दुख हो रहा है, समान रहना ना तुम्हें। उसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ये भी बात है। अरे हाँ, उस ज्ञानी के आश्रम में आके उसके मोबाइल के कॉन्टेक्ट उड़ा दो, वो पागल हो जाएगा। सो ये बिल्कुल भगवान कुछ इम्प्रैक्टिकल नहीं बोल रहे। सम दुख सुखी है कि वो दुख सुख में भगवान को भूलता नहीं है, बस ये है, दैट्स ऑल। उसका स्मरण रहेगा, बल्कि ज्यादा ही बढ़ जाएगा शायद। जब उसको सुख की न्यूज आएगी तो वो बहुत सुखी होगा, और क्या सोचेगा ये किसकी कृपा से हुआ है, तो बस उसका और स्मरण बढ़ गया। दुख की न्यूज आएगी तो वो दुख की न्यूज आएगी तब भी उसका भगवान का स्मरण बढ़ जाएगा, क्या सोचेगा दुख की न्यूज किसने भेजी है। भगवान का प्लान होगा, मुझे दुख मिला है, मेरे कुछ कर्म होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्ण भगवान की जय, हो गया। और क्या, वो भूलेगा नहीं। इसलिए सम दुखी का मतलब मैं बता रहा था, सब समझे नहीं समझे, इसलिए प्रभुपाद ने पहली लाइन में लिखा है कि गुण कैसे हैं, दिव्य गुण है, ये ऑर्डिनरी गुण नहीं है, ये जो आप सुनते रहते लोगों से पढ़ते रहते वो बात नहीं हो रही। सो इसलिए इस तरह से वो निर्मम हो रहेगा। इस तरह से आप दो चीजों से पता लगा सकते हो कि मेरी आसक्ति मेरे लिए है या भगवान के लिए है। दो चीजों से, एक तो बोझ नहीं करोगे और सुख दुख में भगवान को भूलोगे नहीं। अगर वो छूट जाएगी वो भगवान को भूलोगे नहीं। और क्षमी, क्षमी मतलब क्षमावान कर देता है। संतुष्ट सततम योगियता आत्मा दृढ़ निश्चय, संतुष्ट रहता है हमेशा। संतुष्ट मतलब संतुष्ट क्यों रहेगा डिवोटी, वो चाणक्य पंडित ने नहीं बोला पराद्रव्य शीलोष्ट्रवत, दूसरों के धन को मिट्टी के समान देखता है, पराद्रव्य शुमात्रवत, दूसरों की परदारेश, दूसरों की स्त्रियों को अपनी स्त्री को माँ के समान देखना। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म कुमारी वाले, सॉरी टू से दिस, वो अपनी वाइफ को भी माँ के समान देखा, मतलब बहन के समान, एक्चुअली बहन। कंप्लीट नॉनसेंस थ्योरी है, मैं पता नहीं कैसे करते हैं वो, भगवान जाने, बट करते हैं। सो या दूसरों की स्त्री को माँ के समान देखना, तो वो इस तरह संतुष्ट रहता है। वो संतुष्ट क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास प्रेम धन है, मेरे पास भगवान का धन है, मुझे क्या है, मुझे दुनिया में क्या लेना देना किसी लोभ से, लोभ नष्ट हो गया उसका। ये तो आत्मा दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय होता है उसका हमेशा भगवान को प्राप्त। दृढ़ निश्चय का मतलब क्या है यहाँ पर, मैंने बताया था संडे प्रोग्राम में, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना। दृढ़ निश्चय मतलब वो नियमों को दृढ़ता से पालन करता है। दृढ़ निश्चय का मतलब नहीं कि आप टेबल तोड़ दो। वो लोग कहते हैं मैं तो हूं, उससे क्या होगा, चिल्लाते रहो। कृष्णा कह रहे हैं उद्धव को, उद्धव अगर जंगल में आग लग जाए और कोई चिल्लाता रहे तो उससे कुछ नहीं होता, उपाय ढूंढना पड़ता है। चिल्लाते रहो मर जाओगे, क्या होगा, रो लो, चिल्ला चिल्ला के कुछ नहीं होगा। सो दृढ़ निश्चय का मतलब नहीं आप सोचते रहो मैं तो दृढ़ निश्चय हूं, मैं तो दृढ़ निश्चय हूं, सुबह उठा ही नहीं जा रहा, मैं दृढ़ निश्चय हूं। सुबह नहीं उठ पा रहे भाई, मगर हम दृढ़ निश्चय हैं। देखो हम सुबह कभी नहीं उठ पाते, फिर भी दृढ़ निश्चय, तो यही निश्चय। सो उसका कोई मतलब नहीं है, भगवान कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है। वो एक जंगल में आग लगी है, वो चिल्लाने के समान है वहां बैठे बैठे, उससे कुछ नहीं होता। दृढ़ निश्चय मतलब नियम फॉलो करना, दृढ़ता से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना, अदरवाइज दृढ़ निश्चय नहीं है। मान लो ना नहीं है, बार बार कहने से क्या होगा, मान लो नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व तो कभी हो जाएगा। मई अर्पिता मनो बुद्धि रियो मद भक्त समय प्रिय। अब कृष्णा कह रहे हैं कि अर्जुन ये सारे गुण लाना बहुत मुश्किल है, नहीं है का एक सेकंड में कैसे हो जाएगा, मैत्र करुणा निर्ममो निरहंकार समा दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी, वो नहीं आते एक दिन में चीजें। कृष्ण कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे को अपना मन बुद्धि अर्पित कर देगा वो भी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। शुरू यहां से करो, भगवान ने वहां शुरू वहीं से किया है ना, अपने मन बुद्धि अर्पित कर दो, फिर भगवान ने सॉल्यूशन भी बता दिए। करते रहो, ये गुण अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। ये गुण क्या कहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लक्षण है। भक्ति योगस्य लक्षणम भागवतम में भी आ रहा है, ये भक्ति के लक्षण है, ये आने चाहिए, ये आ जाएंगे धीरे धीरे। मगर अगर ये गुण नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भक्ति सही से नहीं होगी। सो भक्ति सही से करने का प्रयास करना पड़ेगा, ये चेक है, चेक कर सकते हो, आ जाएगा अपने आप। मगर ये नहीं आ रहा तो इसको लाने की कोशिश मत करो, क्या करो, भक्ति सही से करो, तब ये गुण अपने आप आ जाएंगे। अपने आप आ भी नहीं सकते, कैसे आएंगे आप, अपने आप कैसे ले आओगे। करुणा करनी है आपको, कोई पत्थर भी मारते फिर भी करुणा करनी है, अपने आप कैसे ले आओगे, आप नहीं ला सकते चीजों को। चीजों से आसक्त होना है मगर भगवान के लिए, ये होगा ही नहीं, अपने लिए आसक्त पड़े रहोगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, भगवान को भूल जाओगे। सो ये आर्टिफिशियली हो ही नहीं सकता, आर्टिफिशियली करने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे। ये कर सकते हैं, हमें भक्ति अच्छी तरह करनी है। अगर ये गुण नहीं आ रहे, भक्ति के रूल्स रेगुलेशंस में कुछ गड़बड़ है या समथिंग इज प्रॉब्लम, आप सही से नहीं कर रहे, या हो सकता है हमने गुण अच्छी तरह समझा ही नहीं। कई लोगों को तो पता भी नहीं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लक्षण ये होते, जब पता ही नहीं तो फिर तो चलता रहेगा। ऐसे भी कई लोग हैं इस्कॉन में, किसी भी संस्था में चलते जा रहे हैं, बस माला कंप्लीट हो रही है, मंगल आरती में आ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कभी कभी कथा हो गई, कभी कभी प्रोग्राम हो गया 15 साल हो गए, अब क्या करना है अब पता नहीं, कुछ करने को ही नहीं है, इसलिए बस चलते रहो है। मतलब ऐसा भी है, मोस्टली ऐसा, इसलिए भगवान ने गुण बता रहे हैं, भाई हमेशा देखते रहो कि कौन कौन सा गुण आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये चेकलिस्ट है, नहीं आया तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ कमी है, करते रहो करते रहो करते रहो, ये आने लगेंगे। मतलब वो केमिस्ट्री में कहते हैं लिटमस टेस्ट, सुने ना, लिटमस टेस्ट है और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। ओके, और कृष्णा और आगे बता रहे हैं गुण, यस्मान न दुजते लोको लोका न दुजते चया, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। एक डिवोटी से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कष्ट नहीं पहुंचेगा। कभी कभी हम कष्ट पहुंचा भी देते हैं, नहीं साधु तो सत्य बोलता है तो लोगों को कष्ट पहुंचता है, नहीं पहुंचता है वो तो बोल ही देते हैं कि तुम भोग में पड़े हो, जिन मृत्यु में पड़े हो, क्यों भक्ति नहीं कर रहे, तो कष्ट तो पहुंचेगा। तो यहाँ पे भगवान क्यों कह रहे हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, डिवोटी तो बल्कि कष्ट पहुंचाता ही रहता है, घर में भी बम फोड़ देगा, बाहर भी बम भैया ये सब बकवास है, ये भी बकवास है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो हो जाता है कभी कभी। सो क्या करें फिर, कहां है डिवोटी, हो फिर तो कह रहे हैं डिवोटी नहीं है, ठीक है
ठीक है, लोगों को एनकरेज नहीं करता भोग की तरफ बढ़ने के लिए, उनको डिस्करेज ही करता भोग में आगे बढ़ने से, भोग से ही कष्ट आता है।
फाइन कष्ट भी देखना पड़ेगा ना, शास्त्रों में भी कष्ट क्या है, वो मतलब सोच रहा है।
हाँ वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, मतलब बेसिकली भौतिक स्तर पे कष्ट नहीं पहुंचा रहा, ये समझना चाहिए, नहीं मेटेरियलिस्टिक लेवल पे कष्ट नहीं पहुंचाता, ठीक है उसको, वो थोड़े ना उसके पैसे के पीछे है, उसकी लाइफ के पीछे पड़ा, ठीक है करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इस तरह से कष्ट नहीं पहुंचाता किसी को। इसका मतलब ये नहीं कि हर्ट नहीं करता, हर्ट कभी भी हो सकता है, मगर वो उसके बेनिफिट के लिए, दैट्स व्हाट द पॉइंट, अननेसेसरी कष्ट नहीं पहुंचाता, अननेसेसरी। हाँ अगर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसको कष्ट पहुंचाना पड़े तो कर भी देता है, वैसे वैसे ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिवोटी अननेसेसरी किसी को कटु शब्द नहीं बोलेगा, बेकार में नहीं बोलने चाहिए कि हर टाइम ही आप बोलते रहो पागलों की तरह, नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं, सत्यम प्रियम हितम वाक्यम, अननेसेसरी नहीं पहुंचाएगा, मगर जब नीड है तब बोलना पड़ेगा, कोई सत्य भी नहीं छुपा सकते। और किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए वो विचलित नहीं होगा, विचलित मतलब वो भगवान को कभी भी नहीं बोलेगा। ऐसे नहीं कि उसको डर नहीं लगता, कभी डर तो लग सकता है, मगर डर में भी भगवान को नहीं भूलेगा। विचलित होने का मतलब नहीं उसको डर नहीं लगेगा, आई मीन टू से अगर आपको खड़ा कर दें और सामने 10 लोग बंदूक लेके खड़े हो जाए तुझे शूट करेंगे तो डर नहीं लगेगा, मतलब अभी कैसे तो डर नहीं लगेगा मगर असली में हो जाएगा ना तो आपको अगर मुझे डर नहीं लग रहा, हार्ट बीट ऐसी बढ़ जाएगी कि वो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, सिस्टम आपके, विचलित मतलब बिविल्डर्ड आई थिंक. सो माइंड तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, नहीं मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए, मतलब आपको अगर जाकर छोड़ दे कहीं जंगल में रात को, पागल ही हो जाओगे आप, शेर की आवाज एक सुनाई दे गई तो. सो डर तो लगता ही है सबको, वो तो नेचुरल है, मगर पॉइंट ये विचलित नहीं होता, मतलब वो भगवान को नहीं भूलेगा. डर लगेगा तो उसको भगवान का और स्मरण हो जाएगा, बल्कि आप देख रहे हो भक्ति में जो नेगेटिव चीजें वो भी पॉजिटिव बन जाती है, नेगेटिव चीज भी भगवान का स्मरण बढ़ा देंगी. सो भक्ति कितनी अच्छी है, भुला नहीं रही भगवान को. सो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको डर लगेगा आप, और भगवान का स्मरण करोगे पेड़ पर चढ़ के, हरे कृष्ण कृष्ण, और चैंटिंग हो जाएगी पूरी रात, चैंटिंग हो जाएगी. वैसे तो कभी चैंटिंग की नहीं पूरी रात, उस दिन हो जाएगी. सो विचलित कहाँ हुए हम, भगवान की चैंटिंग कर ली ठीक है. और हाँ ऑफकोर्स अगर आप एडवांस डिवोटी नहीं हो तब प्रॉब्लम होगी, तब अगर शेर के पास आओ आप माला वाला फेंकोगे इधर ऊपर भूल लोगे सब कुछ, वो फिर भूल लाते हैं नहीं, वी जस्ट फॉरगेट, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है. हर्षाम हर्षा भयो दोए गैर, हर्ष और सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है. आ गया नहीं आ गया, सुख दुख में भय और चिंता में संभाव. देखा भय लगता है उसको मगर फिर भी वो संभाव है. भगवान ने कह रहे हैं भय में भी संभाव है, इसका मतलब भय लगता है, ऐसे नहीं लगता मगर उसका माइंड संभाव रहेगा. कोई डिवोटी पत्थर नहीं बन जाता किसको कुछ भी नहीं हो रहा, वो मायावादी होते हैं. ज्ञानी लोग आर्टिफिशियली सोचते हैं, देखो हमें भय भी नहीं लग रहा, हमें तो सुख दुख भी नहीं है. एक जो योगी होते हैं ना, हरिद्वार में जाओ तो वो लोग आपको कहेंगे, डिवोटीज को मुझसे मिला था एक योगी बहुत पहले जब मैं घर में था, तुम्हारे घर आया था, कह रहा था कि देखो, तो कह रहा था तू मुझे नहीं जानता. मैंने कहा मैं कैसे जानूंगा, पहली बार ही आया हूँ. तो ऐसा ठीक है, अपने जीभ निकालने का देखा, देख रहे ना बिल्कुल थूक नहीं आता इस पे, चाहे तुम दुनिया की सारी सुंदर चीजें रख दो, ये होती है योग साधना. उस टाइम तो मैं नया था, मैंने कहा चलो कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा. सो ये ज्ञानी लोग होते हैं, उनका मतलब समान का मतलब ये होता है. बट डिवोटी का क्या है, एक रिपोर्टर आया था प्रभुपाद के पास, तो रिपोर्टर ने बोला था कि प्रभुपाद आपके डिवोटीज तो गुलाब जामुन रसगुल्ले खाते रहते हैं, ये क्या है मतलब, ये तो क्या है ये तो. सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मैं भूल गया. तो प्रभुपाद के पास हमने रसगुल्ला पड़ा था, प्रभुपाद ने उठाया मुंह में डाला, मैंने कहा हम तो रसगुल्ले खाते हुए भगवान के पास जाएंगे, तो मैं नहीं खाना मत कहो. सो पॉइंट ये है कि मतलब ऑफकोर्स डिवोटी नहीं भूलेगा रसगुल्ले खाते हुए भी भगवान को, मगर इसका मतलब नहीं कि आप खाते ही रहो, क्योंकि डायबिटीज भी हो सकती है. सो बट पॉइंट ये है कि भक्ति एक अलग सीक्रेट है. एक भक्ति देखने से पता नहीं लगती, देखने से आपको बिल्कुल भोगी लगेगा, वो देखने से समझ नहीं आएगा भक्तों को, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. क्योंकि जैसे वो आसक्त भी है, वो तो भी उसका सेलफोन खो गया, वो तो पीछे पड़ गया उसके, यार ये क्या है, तो फिर आगे नहीं है. तो विवेकानंद क्या प्रॉब्लम पता ही हुई थी, विवेकानंद पूरी इंडिया में ट्रैवल, उसने बुक लिखी ना अपनी माय, कौन सी थी वो हमने पढ़ी, लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विवेकानंद, उसने इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम लिखी. तो उसने बोला है कि पूरी इंडिया में ट्रैवल किया मैंने, मैं साउथ इंडिया गया, इतने सारे मंदिर थे, वैष्णव मंदिर मैंने सब देखे, तो जितने भी नारायण के भक्त हैं सब भोगी हैं एक नंबर के, उन्होंने लिखा है वहाँ कोई त्याग नहीं है, और प्रसाद खाते रहते हैं, अच्छा अच्छा नाचते रहते हैं. उसने बहुत क्रिटिसाइज किया अपनी किताबों में, लोगों ने पढ़ी नहीं होगी किताबें इसलिए नहीं पता लोगों को. और विवेकानंद ने भी लिखा है कि तुलसी महारानी की पूजा क्यों कर रहे हो, बकवास, एक फेड़ी तो है, तो इस अच्छा अपने गार्डन में जगह वेस्ट कर रहे हो, तो इस अच्छा अपने गार्डन में बैंगन का पेड़ लगाओ, बैंगन खाने को तो मिलेगा, बंगालियों को बैंगन अच्छा लगता है वो लगा लो. तो बड़ी उल्टी फुल्टी बातें लिखी हैं, इनफैक्ट ही इज फेमस ऑल्सो. हाँ फुटबॉल खेलना चाहिए विवेकानंद ने बोला कि गीता पढ़ने से अच्छा फुटबॉल खेलना चाहिए, उससे शक्ति बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा. ही वाज लाइक फनी. आप पढ़ो विवेकानंद के बारे में, प्रभुपाद ऐसे नहीं बोलते थे उनके अगेंस्ट, जिसने पढ़ा उसको पता है क्या चल रहा है. सो वेल वो क्या है वो लोग, आई डोंट नो. द पॉइंट इज उनके 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 उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग है भक्तों की अंडरस्टैंडिंग. भक्तों को पहचानना मुश्किल है, इसलिए शास्त्रों में लिखा है वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा. वैष्णव की क्रिया मुद्रा इंटेलिजेंट लोग भी नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल है. और इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसलिए भक्ति में कपट बहुत है, ढोंगी भी बहुत है. ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि भाई आप कहोगे गुरु जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो वैष्णव की क्रिया मुद्रा नहीं समझ सकते. उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, उसका ड्रॉबैक हमारे अपने लिए भी है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं समझ आएगा हम आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं क्या चल रहा है. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा थोड़ा सा केयरफुल रहना कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है. इसलिए भगवान ने सारे गुण बता रहे हैं कि ये गुण आने लगेंगे तो आप क्लियर हो जाओगे कि आप सही ट्रैक पे हो, वरना कुछ प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं. टाइम क्या है, आई विल जस्ट क्विकली फिनिश हो गया. अनपेक्षा सुतिर दक्षा, मेरा भक्त के अनपेक्षा मतलब किसी की अपेक्षा
नहीं करता.
अपेक्षा मतलब क्या होता है, धन धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करता. मैं कहा प्रभुपाद इस पपट में लिख रहे हैं कि अगर मंदिर बनाने के लिए धन चाहिए तो वो संघर्ष करेगा, अपने लिए नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर जैसे भक्तों के लिए अगर कोई भक्त है आपके घर में, आपके पास पैसे नहीं है कुछ, तो आप कहीं से कलेक्ट करके लाओगे नहीं लाओगे, उनको प्रसाद देना है नहीं देना है. सो उसके लिए संघर्ष कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने लिए नहीं करता, अपने लिए ठीक है. अपने लिए सुदामा इधर है, आराम से रह रहे हैं, क्या है. सुचिर दक्षा, सुचि मतलब शुद्ध है, मन और बाहर से शुद्ध है. वैसे पता है एक मंत्र है संस्कृत में, यह भजेत पुंडरीकाक्षम भाई अंतर सुचि, जो हमेशा पुंडरीकाक्ष कृष्ण की कृष्ण का स्मरण करता है वो बाहर अंदर से हमेशा सुचि रहता है, वहां का नाम लेने से. दक्षा, दक्षा मतलब निपुण है, निपुण पढ़ लेना. भक्ति कर, जो भक्ति करता है वो निपुण है ही. उदासीन, उदासीन मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब उदास होता है ना उदासीन का अंदर. उदासीन का मतलब है कि, उदासीन का मतलब क्या है ये बताओ मुझे. यहाँ पर
संभाव है, भाव संभ्रेष
वो तो ठीक है. अदर व्हाट यू से,
उदासी है ही नहीं,
उदासी
नहीं.
हाँ ये कह सकते हो चिंता से. उदासीन, उदासीन का मतलब, उदासीन का वैसे मतलब, वैसे पता है वो क्या मतलब होता है, वैरागी होता है. मतलब ऐसे उदासीन संप्रदाय होती है ना, जितनी भी होती है ना पंजाब में बहुत फेमस उदासीन संप्रदाय, तो वो जनरली वैरागियों को कहते हैं उदासीन. सो भक्त उदासीन है, उदासीन मतलब उसको संसार से कुछ लेना देना
नहीं,
जितना भगवान की सेवा में जरूरी ले लेता है, जितना नहीं है छोड़ दो, दैट्स ऑल फिनिश. गता व्यथा, गता व्यथा मतलब आई डोंट नो व्हाट्स मीनिंग ऑफ, सारे कष्टों से मुक्त. ठीक है, कष्ट होते हैं डिवोटी को मगर उस पर ध्यान नहीं देता डिवोटी. शरीर को चोट भी लगेगी, उसको दर्द भी होगा, मगर डिवोटी सोचता है चलो ठीक है जो भगवान की मर्जी है, दैट्स ओके. सबसे बड़ा कष्ट तो उसको भगवान को भूलने में होता है, बस भूले नहीं. सबसे बड़ा कष्ट तो उसको ये सोच के होता है कि भगवान ने अगर मुझे त्याग दिया तो क्या होगा, वो उसको बहुत दुख लगता है उसको. क्योंकि भगवान तो कभी भी, मतलब उस दिन बात तो कर रहे थे कि लोग तो प्रे करते हैं कि भगवान हमें स्वीकार कर लो, महान भक्त हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें कभी त्यागिए मत, क्योंकि हमने ऐसा क्या किया जो भगवान को बोल दे हमें स्वीकार करो. हम तो हर क्षण वो कर रहे हैं कि भगवान त्याग देंगे, तो हमारी तो प्रार्थना है कृष्णा प्लीज हमें त्यागिए मत. सो इट्स क्योंकि उसको तो बहुत दुख, अगर भगवान ही छोड़ देंगे तो क्या होगा फिर लाइफ में उसको. सो ये वो भजन भी है, गौरेंगर तुम्हें मोरे ध्याना छाड़े, दैट्स अ प्रेयर. सो मेटेरियल प्लेटफॉर्म के लिए ठीक है. सर्वारंभा परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिया, समस्त कष्टों से रहित किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अत्यंत प्रिय है. उसको संसार में कोई कुछ नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए उसको कुछ. ठीक है ओके. अब भगवान थोड़े से रिपीट कर रहे हैं गुण, प्रभुपाद लिख रहे हैं. रिपीट क्यों कर रहे हैं, बताने के लिए कि सारे गुण भक्तों में, भक्ति करोगे तो आने चाहिए. ये चेक करते रहो, ये चेक करते रहो अपने में. जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पश्चाताप, ना पछताता है.
डिपेंड
नहीं, डिपेंड न इच्छा करता है, न जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रु के लिए समान है, जो मान अपमान शीत गर्मी सुख दुख यश अपयश में संभाव रखता है, संभाव का मतलब समझ रहे हो ना, भगवान को भूलता नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं आप एसी में सो रहे, ठंड लग रही है, मैं रजाई नहीं ओढ़ूंगा, संभाव होना चाहिए, डांट हो रहे, नहीं नहीं संभाव ओढ़ लो और क्या करना है, भगवान को मत भूलो, दैट्स ऑल। जो दूषित संगति में सदैव मुक्त रहता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, संग अवर्जिता, जो गलत संग में भी सदैव उसका मन शुद्ध रहता है, ये तो ये वाला गुण भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? ऑफकोर्स डिवोटी के लिए। डिवोटी में किसके लिए? जो दूषित संगति में सदैव मुक्त रहता है। ऑफकोर्स हमें दूषित संगति तो नहीं लेनी चाहिए ना, किसके लिए बोल रहे हैं? हाँ, एक तो गृहस्थों के लिए हो गया, जब काम करने जा रहे हो ऑफिस में तब तो गलत संग में रहोगे, मगर भक्त उसके प्रभाव से मुक्त रहता है क्योंकि भक्ति अच्छी तरह करता है। अगर भक्ति अच्छी तरह नहीं कर रहे तो फिर प्रभावित हो जाओगे, तो आप देख सकते हो इसका मतलब, अगर प्रभावित हो रहे हो तो मतलब आपकी भक्ति अच्छी तरह नहीं हो रही होगी, लक्षण है। और प्रचारकों के लिए बोल रहे हैं, हम भी तो गलत संग तो जानबूझ के ही जा रहे हैं वहां और प्रचार करने के लिए, तो सदैव मौन मतलब फालतू की बात नहीं करता। ऑफ कोर्स वैसे तो भगवान के बारे में अब एक घंटे से मैं का मौन हूं क्या और मैं पढ़ ही रहा हूं, जो सदैव मौन रहता है, किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, तो किसी प्रकार से घर बार की परवाह नहीं करता। इसका मतलब क्या है, घर बार की परवाह नहीं करता?
घर होना जरूरी नहीं
है, अनिकेत, इसका मतलब क्या है, जो घर बार की परवाह नहीं करता? हाँ, मतलब प्रॉपर्टी के पीछे नहीं पड़ा होता, ये डबल कर लूंगा, प्रॉपर्टी वहां ले लूंगा, ठीक है जितना जरूरी है उतना करो, बट ठीक है घर अगर फट भी गया, बम हो गया तो क्या हो गया, ऐसा सोचते नहीं हम, क्योंकि अगर आपका घर चला गया ना तो आप मरोगे, मरोगे वहां, हार्ट अटैक हो जाएगा सबका, घर ही नहीं है। मगर डिवोटी ठीक है, हो गया तो हो गया, दैट्स ओके, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, हमारा घर तो पूरा संसार है, नहीं वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है नहीं है तो क्या है, चल दो सड़क पे पेड़ के नीचे सो जाओ, इट्स इजी टू से, होता नहीं, ऑफकोर्स आपके घर में बम भी नहीं फूट रहा ये भी बात है, बट या वी शुड बी नॉट सो मच अटैच्ड ऑल्सो, नहीं है तो ठीक है, जिसने दिया उसने ले लिया, क्या करेंगे अब, दैट्स ऑल। अब घर तो वापस नहीं ला सकते ना, अगर बम टूट फूट जाएगा, घर भगवान का है मतलब वो तो ठीक है, मगर वापस कैसे लाओगे उसको, वो तो फूट गया ना, अर्थ को एक आ गया, खत्म हो गया, फिर थोड़े ना आप रोते रहोगे, सर पीटते रहोगे, हाय भगवान का घर नीचे चला गया ऐसा भी होता है, मेरा घर फूट गया यार, आग लग गई, मेरा नहीं भगवान का घर था, इतना सुंदर घर था, देखो मेरा भगवान का घर आग लग गया, अब क्या करूं, हाय हाय हाय, दैट्स सो यू हैव जस्ट फॉरगॉटन, भगवान को आप बोल गए, आप भगवान नाम ले रहे हो मगर सब अपने में ही चल रहे हो, दैट्स ऑल, जस्ट फॉरगेट इट। जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। और लास्ट श्लोक है, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ये तो धर्म्याम अमृतम इदम, भगवान कह रहे हैं कि भक्ति का पथ अमृत रूपी है, लगा भक्ति करोगे सही से तो अमर हो जाओगे, भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। यथोक्तम पर्युपासत श्रद्धा धाना मत परमा, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य कर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहता है, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। बस सिंपल हो गया, श्रद्धा से भगवान पे पूर्ण रूप से रहना, बस चलते रहो बस, और अच्छी तरह भक्ति करो तो सक्सेस गारंटीड है, कृष्णा कह रहे हैं, इफ यू आर सिंसियर सक्सेस गारंटीड है। हरे कृष्णा, कुछ पूछना, कुछ कहना, आई विल स्टॉप हियर। वो क्या मतलब है उसको, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कर लो कर लो समय काल परिस्थिति के, तो उसमें क्या लेना देना है भक्ति से? क्वेश्चन क्या है?
समय काल परिस्थिति में जब अनुसार मतलब अपने आप को डाल लेते हैं या बदल लेते हैं
नहीं, उससे भक्ति को क्या लेने देना? मुझे तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली।
घर था ठीक है, घर
नहीं, क्वेश्चन पहले समझो, पहले आंसर मत करो, आंसर नहीं करना होता, क्वेश्चन क्या है ये बताऊं ना पहले। हाँ तो समय काल परिस्थिति में अगर क्या करना है आपको, जॉब करना है क्या?
मैं सब चीजों के बारे में
तो करना ही होता है, समय काल परिस्थिति तो देखनी होती है हर चीज में। अगर समय काल परिस्थिति नहीं देखेंगे तो फिर कैसे रहेंगे? मैं समझ गया क्या कह रहे हैं, जैसे अभी हो रहा है तो समय काल परिस्थिति, ऑफकोर्स यू हैव टू सी यू नो, अगर अगर समय काल परिस्थिति के अनुसार आपको डिसीजन ले रहे हो, उसमें भगवान को भूल रहे हो तो नहीं करना चाहिए। अगर समय काल परिस्थिति के अनुसार आप डिसीजन ले रहे हो, उसमें भगवान को स्मरण रह रहे हो तो करना चाहिए। बॉटम पॉइंट है, स्मरण हो रहा है नहीं हो रहा है। सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृत हो न चातुचित, बस ये देखना है। ऑफकोर्स इसका आंसर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट सिंपल सिंपल आइडिया ये, समझे नहीं समझे, बस इस तरह से डिसीजन लेते रहो। क्या कह रहे राहुल? हाँ बताया था, सारे फलों का त्याग कर दो, कौन से श्लोक में?
11 नंबर।
अच्छा वो वाला, वो बताया था सारे फलों का त्याग कर दो, वो भोगियों के लिए बोल रहे हैं ना भगवान, कि ध्यान योग ज्ञान योग का त्याग, उसमें जो फल है मुक्ति और सिद्धियों का त्याग कर दो। दैट्स व्हाट
भगवान ने बताया कि ध्यान से श्रेष्ठ ध्यान है, और तो ऐसा ध्यान से श्रेष्ठ भक्ति है।
हाँ वो भक्ति तो है ही, नहीं नहीं ये आप सुन नहीं रहे थे क्या? ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ये भक्तों के लिए नहीं है श्लोक। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो ज्ञान कर लो, ज्ञान ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, मगर जो भी करो दोनों में कर्म के फलों को त्याग दो, क्योंकि ज्ञान योग का फल मुक्ति है, ध्यान योग का फल सिद्धि है, उनको त्याग दो वरना ज्ञान योग ध्यान योग करके भक्ति तक नहीं पहुंचोगे। ओके देयर इज नो क्वेश्चन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।